श्री राधा गोविंद भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी की, शील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे
राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
राम राम
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जय प्रभु
समेरिषीणा ऋषभ
प्रसीदता भुर तेर महत भी यही मापुरो विभो निर्माय शेते यदमोश पुरुष भुं तेर गुणनशो दशोडशात्मक सुलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि मे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित नरसिंह चतुर्दशी भगवान श्री नरसिंह देव के प्राकट्य के इस उपलक्ष में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बड़ा पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार इस धरा धाम पर हुआ था। वैसे तो भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं, परंतु सभी अवतारों में विलक्षण अवतार यदि कोई है तो वह है नरसिंह देव भगवान का अवतार। अवतार तो कई सारे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रार्थना और प्रतिज्ञा करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, प्रसिद्ध श्लोक सब लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े रहकर कहते हैं कि अर्जुन, जब जब इस संसार में इस पृथ्वी लोक पर धर्म की हानि होती है, असुरों का बढ़ावा होता है, धर्म का नाश होता है, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, साधु और संतों को आनंद देने के लिए युग युग में मैं अवतरित होता हूं, प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक युग में इस धरा धाम पर प्रकट होते हैं, अवतार धारण करते हैं। भक्तों, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। कई बार हम सब लोग, आप सब लोग हिंदी समझ रहे हैं ना, क्योंकि यह महाराष्ट्रन लोगों का गांव है और मुझे मराठी नहीं आता है, तो कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो प्रयास कीजिएगा। क्योंकि यदि हृदय में भाव हो तो भाषा प्रकट होने में देर नहीं लगती है। हृदय में भाव और श्रद्धा के साथ हमें श्रवण करना चाहिए। और सब लोग मन बुद्धि और शरीर से यहीं पर बैठिए, मन को इस मंदिर से बाहर मत लेकर जाइए, क्योंकि एक घंटा हमारे पास है और भगवान की बहुत दिव्य कथा है। सब लोग तैयार है? सब लोग केवल कथा में ध्यान रखेंगे और हमारे ओर देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भगवान के अनंत अवतार हैं। मैं यह कह रहा था, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। अवतार का अर्थ होता है, अवतार का अर्थ होता है नीचे आना। भगवान इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत में अपने धाम, निज धाम गोलोक वृंदावन में विराजते हैं। भगवान बहुत दूर, बहुत ऊपर आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, परंतु जब जब पृथ्वी का भार दूर करना होता है, धर्म की स्थापना करनी होती है, तब भगवान ऊपर से नीचे उतरते हैं बस, और लीला करके बाद में ऊपर चले जाते हैं। परंतु इस संसार के कुछ मूर्ख लोग, मूढ़ लोग यह समझते हैं कि भगवान का जन्म होता है और भगवान मर जाते हैं। आप लोग सुनते होंगे, कई लोग कहते हैं आपके कृष्ण तो मर गए हैं। तो वे मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को इस प्रकार से समझाना चाहिए यदि आप यह कह रहे हो कि कृष्ण मर गए, तो आप यह समझ लो कि सूर्य मर गया। अभी सूर्य किसी को दिख रहा है? सूर्य किसी को नहीं दिख रहा है। रात को 7:30 बज चुका है, सूर्य नहीं दिख रहा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य मर गया? नहीं नहीं, सूर्य मरा नहीं है, सूर्य अस्त हुआ है कुछ घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद अगले दिन सुबह फिर से प्रकट होगा। सूर्य अस्त होता है, सूर्य मरता नहीं है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और तिरोभाव होते हैं, चले जाते हैं, उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है। हमें लगता है कि कृष्ण का जन्म और मृत्यु होता है, परंतु भगवान का जन्म और मृत्यु दिव्य है। इसलिए गीता में कृष्ण को कहना पड़ा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, यदि कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, फिर मरने के बाद उसे इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। कृष्ण के, भगवान के जन्म और कर्मों को यदि कोई समझ जाए, तो फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में वो वापस नहीं आता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो वैसा ही भगवान का अवतार आज के दिन हुआ, बहुत विलक्षण अवतार। वैसे तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये सभी अवतार वेद और शास्त्र में लिखे गए हैं कि इस समय पर भगवान का यह अवतार होगा और भगवान इस व्यक्ति को माँ और इस व्यक्ति को पिता बनाकर प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार 5000 वर्ष पहले हुआ, परंतु करोड़ों वर्ष पूर्व शास्त्र में लिखा हुआ था, कृष्ण नंद और यशोदा वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। सभी अवतारों के बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी, परंतु नरसिंह देव भगवान का अवतार विलक्षण रूप से हुआ। किसी को नहीं पता था भगवान जन्म लेने वाले हैं, और यह अद्भुत अवतार, और सब अवतारों में भगवान ने मां और बाप को, माता और पिता को स्वीकार किया, परंतु इस अवतार में भगवान नरसिंह देव एक खंभे को मां और बाप बनाकर जन्म लिए, खंबे से प्रकट हुए। तात्पर्य क्या था, कारण क्या था? कारण एक ही था। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कह दिया, यस पिताजी, इस खंबे में भगवान है। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामित तो नरसिम्हा। पिताजी, मुझे तो अंदर भी भगवान दिख रहे हैं, बाहर भी दिख रहे हैं, जहां देखूं वहां मुझे विष्णु ही दिख रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं इस खंबे में? हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। यद्यपि नहीं थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस खंबे में भगवान नहीं थे, परंतु अपने भक्त की प्रतिज्ञा को, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम, उस खंबे को फाड़कर भगवान प्रकट हो गए आज ही के दिन। और इस संसार में कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ना कि आप पत्थर की पूजा क्यों करते हो, जो निराकारवादी है, निरंकार है। वे लोग भगवान को निराकार मानते हैं और ये लोग कहते हैं कि आप पत्थर को भगवान क्यों मानते हो। परंतु ऐसे मूर्खों के लिए भगवान ने प्रकट कर दिया, यदि भाव है, श्रद्धा है और भक्ति है, तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं। नरसिंह देव भगवान पत्थर से प्रकट होकर ये प्रमाण दे दिए कि मैं पत्थर में भी विराजमान हूं। तो आज के दिन नरसिंह देव भगवान का अद्भुत अवतार हुआ। और ये अवतार किसके लिए हुआ? वैसे तो भगवान का अवतार के कई सारे प्रयोजन है। भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो बहुत सारे कार्य करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, परंतु भगवान का इस संसार में आने का सबसे बड़ा कारण यह है, भगवान इस पृथ्वी पर अपने भक्त को आनंद देने के लिए आते हैं। भगवान का एक ही उद्देश्य है। भगवान का यह उद्देश्य नहीं है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगा और असुरों का वध करूंगा। भक्तों आप कल्पना कीजिए, जो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे केवल इच्छा करते हैं, मया जक्षेण प्रकृति, भगवान की इच्छा शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है। तो उस भगवान को एक छोटे से हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए वहां से यहां आने की जरूरत है? अपनी इच्छा से ऐसे करोड़ों हिरण्याकश्यपु को मार सकते हैं? भगवान नरसिंह देव एकमात्र अपने भक्त प्रहलाद को आनंद देने के लिए आए, इसलिए हम गाते हैं ना, प्रहलाद अहलाद दाईने। दाईने का अर्थ होता है देने के लिए और अहलाद का अर्थ होता है आनंद। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को अहलाद दाईने आनंद देने के लिए इस संसार में प्रकट हुए। केवल नरसिंह देव ही नहीं, भगवान के सभी अवतार और साक्षात कृष्ण अपने निज भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो प्रहलाद को आनंद देने के लिए भगवान नरसिंह देव यहां पर आज के दिन प्रकट हुए हैं, और प्रकट होकर हिरण्याकश्यपु जो बहुत भयानक दैत्य था, वह कथा हम आज से प्रारंभ करेंगे, परंतु आज के दिन की महिमा मैं आपको बताऊं। हिरण्याकश्यपु का शरीर वज्र के समान कठोर था। प्रभुपाद जी बहुत नरसिंह आरती दिए हैं, ने कहते हैं कि हिरण्यकशिपु वक्षः शीलटंका नखालये। हिरण्यकशिपु की छाती वक्षस्थल किस कैसा था? कहते हैं शील अर्थात पत्थर के समान था। हिरण्याकश्यपु का शरीर और उनका वक्षस्थल पत्थर के समान कठोर था, परंतु भगवान नरसिंह देव के नाखून कैसे थे? कहते टंक के समान। आप मराठी में क्या कहते मैं नहीं जानता हूं, पत्थर को छन्नी, छेनी छन्नी जो कहते हैं, छन्नी बहुत छोटी होती है, आपने देखा है, पत्थर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस छन्नी से वो कितना भी बड़ा पत्थर कट जाता है। ऐसे हिरण्याकश्यपु का शरीर पत्थर के समान था, परंतु भगवान के जो नाखून थे वे छन्नी के समान थे, फाड़ दिए उसे। आज ही के दिन संध्या के समय, इसी समय भगवान नरसिंह देव ने हिरण्याकश्यपु का वध किया, और आज ही के दिन एक महान भक्त प्रहलाद की विजय हुई। तो आज बहुत सुंदर परम पावन पवित्र दिन है, नरसिंह चतुर्दशी, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है, कृपा है, कि हम हमारे घर के निकट इतना सुंदर मंदिर में भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो श्रुति परायण प्रभु ने यह आयोजन किया है, आज से लेकर रविवार तक हम यहाँ पर प्रहलाद और नरसिंह देव भगवान की कथा करेंगे। आज शाम को, कल सुबह, कल शाम को, परसों सुबह और परसों शाम को, कितना प्रवचन हुआ? 5। वैसे तो सप्ताह होती है, 7 होता है, परंतु हमारे इस्कॉन में तो नित्यम भागवत सेवा रोज होता रहता है, परंतु ये 5 प्रवचन जो है वे विशेष प्रवचन होगा, और ये 5 प्रवचन श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक हिरण्याकश्यपु, प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव भगवान की कथा है। तो इस 3 दिन में अर्थात इस 5 प्रवचन में हम यह संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। वैसे तो आज नरसिंह चतुर्दशी है, परंतु हमारी कथा में हिरण्याकश्यपु का वध परसों रविवार को शाम को होगा। वैसे तो दिन के अनुसार आज हुआ है, कथा के अनुसार परसों हिरण्याकश्यपु का वध होगा। तो आइए हम भागवत के अनुसार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का आधार भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज को सुनाए हैं, और सुखदेव गोस्वामी उस प्रसंग को कहते हैं जहां पर आज से 5000 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय सभा की थी, और उस राजसूय सभा में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हैं। तो आइए नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को जो प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई थी भागवत के अनुसार वही कथा हम आज यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के तीसरे अध्याय से। कथा की भूमिका आप समझ लीजिए, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु दो भाई थे। बड़े भाई का नाम हिरणाक्ष था, छोटे भाई का नाम हिरणाकश्यपु था। यह हिरणाक्ष जो बड़ा भाई था, एक दिन उसके मन में क्या सूझा, इस ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं और बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी होती है। पृथ्वी के ऊपर जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, तलातल, पाताल, रसातल इत्यादि, बिल्कुल बीच में पृथ्वी लोक है। यह हिरणाक्ष बहुत बड़ा असुर था और असुर होने के नाते सोचा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए, ध्यान और तपस्या होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि तपस्या, ध्यान और यज्ञ होगा तो यज्ञ के द्वारा देवता शक्तिशाली होंगे, और जब देवता शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ युद्ध होगा तो हम हार जाएंगे। देवताओं को शक्ति मनुष्य से मिलती है, मनुष्य जब यज्ञ करते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जब यज्ञ करते हैं तब उस यज्ञ का भाग देवताओं को जाता है और तब देवता शक्तिशाली बनते हैं। तब हिरणाक्ष ने सोचा कि इस पृथ्वी को ही कहीं ले जाकर छिपा दूं, जहां से मनुष्य की उत्पत्ति ना हो और देवताओं के लिए यज्ञ ही ना हो। हिरणाक्ष आया, पृथ्वी को रसातल में जाकर छिपा दिया, और यह पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है, और यह वसुंधरा और कोई नहीं, भगवान विष्णु की पत्नी है। अब भगवान की पत्नी को कोई अपहरण कर ले, छिपा दे, तब तो क्या होगा, ये तो आप सब लोग जानते हैं। रावण ने भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का हरण किया, एक सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने क्या नहीं किया, इतने बड़े समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया, और इतना ही नहीं, लाखों लाखों असुरों का विनाश करने के बाद रावण, कुंभकर्ण, बाली, खर, दूषण इत्यादि सभी असुरों को मारकर अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किया। वास्तव में भगवान सिखाते हैं कि अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए दो तीन लोगों को मारना भी पड़े तो उसमें कोई अधर्म नहीं है, परंतु ये त्रेता युग के लिए है। कलयुग में यदि आप किसी को मार डालोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। तो पत्नी की रक्षा करना ये पति का कर्तव्य है। पति का अर्थ ही होता है पालन करने वाला, जो अपनी पत्नी का पालन करे उसे पति कहते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी वसुंधरा पृथ्वी देवी को हिरणाक्ष ने रसातल में छिपा दिया। भगवान ने सूकर केशव धीता, सूकर रूपा जय जगदीश हरे। भगवान श्री विष्णु ने सूकर वराह रूप धारण किया और इस वराह रूप के द्वारा अपनी पत्नी पृथ्वी का उद्धार करके 14 भुवन के बीचों बीच उसे लाकर रख दिया। और तत्पश्चात भगवान वराह ने अपनी गदा से हिरणाक्ष का वध कर दिया। बड़े भाई हिरणाक्ष का वध हो गया तब हिरणाकश्यपु बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर सोचने लगा कि यह विष्णु ने मेरे भाई का वध कर दिया है, इसलिए कैसे भी करके विष्णु को मारना होगा। परंतु विष्णु को मारने के लिए शक्ति चाहिए भाई, तो शक्ति प्राप्त करने के लिए हिरणाकश्यपु सोचा कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तब नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, हिरणाकश्यपु के मन में 5 इच्छा उदय हुई। हिरणाकश्यपु के मन में 5 इच्छा जगी, क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंदम एक राजम यदि सत। हिरण्यकश्यप के मन में पांच इच्छा, सबसे पहले कही कौन सी इच्छा? अजय। हिरण्यकश्यप अजय बनना चाहता था। अजय का अर्थ होता है जिसे कोई जीत न सके। हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि मैं ऐसा युद्ध करूंगा मेरे साथ कोई जीत न सके, पहली इच्छा। दूसरी इच्छा क्या थी? अमर। हिरण्यकश्यप अमर बनना चाहता था, कभी मरना नहीं चाहता। तीसरी इच्छा क्या थी? अजर। अजर का अर्थ होता है जो कभी जीर्ण न हो, अर्थात बुढ़ापा न आए। हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि मैं कभी बूढ़ा न हो। चौथी इच्छा क्या थी? अप्रतिद्वंद्व। हिरण्यकश्यप की चौथी इच्छा थी कि मेरे साथ द्वंद करने वाला एक भी व्यक्ति न हो। और पांचवी इच्छा थी एक राजम। वे इस पूरे भूमंडल का, पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता था। वास्तव में ऐसी इच्छा केवल असुरों को ही हो सकती है। आज भी यदि ऐसी इच्छा किसी को होती है तो समझ लेना चाहिए आसुरी प्रवृत्ति। पता लगाइए इसमें कितने लोग आ जाते हैं। केवल एक चीज की बात करूं, हिरण्यकश्यप अजर बनना चाहता था। अजर जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, और अजर का अर्थ होता है बूढ़ा नहीं बनना चाहता था। आज भी संसार में लोग बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं। बुढ़ापा आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, फिर भी ब्यूटी पार्लर में जाकर काले करवा देते हैं। जो लोग अपने बुढ़ापा को छिपाना चाहते हैं, जो लोग बूढ़े बनना नहीं चाहते हैं, भाई मैं नहीं कर रहा हूं, भागवत कर रहा है, वे हिरण्यकश्यप जैसे। हिरण्यकश्यप भी बूढ़ा बनना नहीं चाहता था। तो देखो, ये जब हमारे बाल सफेद होते हैं तो ये भगवान की एक नोटिस है। जैसे जब हम बिल नहीं भरते हैं, लाइट का या टेलीफोन बिल नहीं भरते हैं, तो गवर्नमेंट की नोटिस आती है कि भाई आपने भरा नहीं है, भर दीजिए नहीं तो दंड होगा। वैसे भगवान के द्वारा एक नोटिस है कि आपके बाल सफेद हो गए, भजन करना शुरू कर दो, भक्ति शुरू कर दो, नहीं तो यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। परंतु हम उस नोटिस को स्वीकार नहीं करते, हम उस सफेद बाल को काले कर देते हैं। तो ये तो आसुरी प्रवृत्ति है। जो बुढ़ापे से बचना चाहे, जो मृत्यु से बचना चाहे, तो हिरण्यकश्यप ये पांच चीज चाहता था जो किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि यह चीज प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना होगा। देखिए, इतना बड़ा असुर होने के बाद भी बुद्धि कितनी सुंदर थी। वे अपने घर से चलकर गुरु गृह गए तुरंत महीपाला। अपने घर से चलकर गुरुदेव के आश्रम में गया। हिरण्यकश्यप का गुरु कौन था? कहते हैं हिरण्यकश्यप शुक्राचार्य को गुरु बनाए थे। शुक्राचार्य के घर पर गया। वास्तव में जब जीवन में कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो चलकर गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। हिरण्यकश्यप गुरु के पास गया, कहा गुरुजी, मुझे अजय, अजर, अमर, अप्रतिद्वंद्व, एक राजम, ये पांच चीज चाहिए, बोलो मैं क्या करना चाहिए। तब गुरुजी शुक्राचार्य ने कहा, एक काम करो, ये पांच चीज यदि चाहते हो तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी यदि प्रसन्न हो गए तो ये सब कुछ मिल जाएगा। तब हिरण्यकश्यप सोचा, ठीक है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यप बहुत भयंकर तपस्या करने के लिए सोचा, और भयंकर तपस्या करने के लिए सतेपे मंदर द्रोणिया तपह परम दारुणम। कहते हैं वह दारुण परम कठोर तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत के ऊपर गया। और कैसी तपस्या करने लगा? दारुणम। दारुणम अर्थात आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की थी। तपस्या का प्रकार क्या है? कहते हैं ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। अवनि पृथ्वी के ऊपर केवल अपने अंगूठे को स्पर्श करके खड़ा था। अपने दोनों पांव के दोनों चरण के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर ऊर्ध्व बाहु दोनों बाहु ऊपर करके नभो दृष्टि अपनी दोनों आंखें दोनों दृष्टि नव की ओर करके हिरण्यकश्यप तपस्या करना प्रारंभ किया। और एक दो दिन के लिए नहीं, हिरण्यकश्यप अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर दोनों हाथ और आंखें ऊपर करके कहते हैं देवताओं के 100 वर्ष तक, अर्थात हिरण्यकश्यप 36,500 वर्ष तक इस प्रकार से खड़ा रहा। 36,500 वर्ष तक, कल्पना कीजिए कितना समय होता है। और इतना समय बीतने के बीतते समय क्या हुआ, जटा आधी तिभि रेजे संवार तक इवाम सुभी तस्मी तपस्य तप्य माने देवास्थाना निभैजी रे। हिरण्यकश्यप की जटाओं से चमक प्रकाश निकलने लगा। वास्तव में जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्या करने से तेज बढ़ता है। आज संसार में सब लोग अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं, अपने मुंह के ऊपर विको टर्मरिक लगाते हैं, पॉन्ड्स लगाते हैं। वास्तव में चमकना चाहते हो तो तपस्या करनी चाहिए। देखिए ये असुर है, असुर होने के बाद भी भागवत में इनका नाम आ रहा है और कह रहे हैं कि तपस्या के कारण जटा आदि तिबिरेजे सम्मार तक इवाम शुभी, उनकी जटा से कितना प्रकाश निकलने लगा। कहते हैं कि सम्मार तक प्रलय के समय जब सूर्य चमकता है उतना प्रकाश उनकी जटा से निकलने लगा। आज जब सूर्य का प्रकाश निकलता है हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते हैं आज के दिन, और प्रलय के समय आज से हजारों गुना ज्यादा सूर्य तपता है, और उस समय जो प्रकाश होता है उतना प्रकाश हिरण्यकश्यप की जटा से निकलने लगा। और इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठोर तपस्या, कहते हिरण्यकश्यप की तपस्या से तस्य मूर्ध समुद्भूत सदुमो अग्निस्तपोमय तीर्य ऊर्ध्व अधो लोकान प्राप्त द्विशत गीरित। हिरण्यकश्यप की इस कठोर तपस्या के कारण उनके सिर से, उनके मस्तिष्क से अग्नि निकलने लगी, और वह अग्नि तीर्य बाजू के लोकों में, ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में, और अधर लोकान नीचे के लोकों में, सभी लोकों में फैलने लगी। कहते हैं वह साधारण अग्नि नहीं थी, वह अग्नि स्पेशल दूसरों को तपाने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को मारने के लिए हिरण्यकश्यप के शरीर से प्रकट हुई। चक्षुर्भू धनवंत सद्विपास चालभू निपेतुस ग्रहस्तारा जज्वलस्यु दिशो दश। हिरण्यकश्यप की इस अग्नि से दशो दिशाओं में आग लगने लगी, दशो दिशा में आग जलने लगी दिशाएं। और इतना ही नहीं, सभी नक्षत्र ग्रह तारा अपने स्थान को छोड़कर नीचे गिरने लगे। तेन तप्ता दियुम त्यक्त्वा ब्रह्म लोकम ययुसुरा। और हिरण्यकश्यप के सिर से निकली हुई ये अग्नि धीरे धीरे जनलोक मरलोक तपलोक कहते हैं स्वर्ग लोक तक चली गई। और देवता लोग जिस स्वर्ग में रहते हैं उस स्वर्ग में यह अग्नि सबको जलाने लगे। कल्पना कीजिए आज की थोड़ी सी गर्मी हमको इतना सारा जला देती है, हिरण्यकश्यप की यह तपाने वाली अग्नि देवताओं को कितना कष्ट देती होगी। देवताओं के महल जलने लगे, देवताओं का शरीर जलने लगा। तब देवतागण स्वर्ग लोक को खाली करके उसके ऊपर के लोग ब्रह्म लोक में चले गए, और ब्रह्म लोक में जाकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के चरणों में हाथ जोड़कर गिर गए। ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ, देवतागण ब्रह्मा जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी यह असुर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है और उनकी तपस्या से ये अग्नि हमारे स्वर्ग को जला चुकी है, कृपया करके ब्रह्मा जी आप हमारी रक्षा करें। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी को कहा कि रक्षा करें तब ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया, तब देवताओं ने नीति से काम लिया। देवताओं ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ करना होगा। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी हम आपको एक सत्य बात बताएं, आप नहीं जानते होंगे, और यदि जानते भी होंगे फिर भी हम आपको बता रहे हैं यह हिरण्याकश्यपु तपस्या क्यों कर रहा है। ये हिरण्याकश्यपु तपस्या ब्रह्मा बनने के लिए कर रहा है। ब्रह्मा जी ये तपस्या करके आपके स्थान में बैठ जाएगा। ब्रह्मा जी आप देख लीजिए, आपको भी एक दिन हिरण्याकश्यपु का जूता साफ करना पड़ेगा। अब वो दिन दूर नहीं है, ब्रह्मलोक खाली करके हिरण्याकश्यपु के घर पर झाड़ू और पोछा लगाना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो हम जाकर कुछ करते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी और नारद मुनि कहते हैं इति विज्ञापितो देवे भगवान आत्मभूर नृप परितो भृगु दक्षाधेययो दैत्येश्वराश्रयम्। कहते इस प्रकार से देवताओं के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष भृगु इत्यादि को लेकर हिरण्याकश्यपु के पास चले गए। अब प्रश्न होता है ब्रह्मा जी अकेले भी जा सकते थे, ये सबको लेकर क्यों गए? भागवत वास्तव में रस आस्वादन करने का विषय है, परंतु कुछ लोग यहाँ पर नए हैं इसलिए मैं थोड़ा तेज गति से जा रहा हूँ। यदि रसास्वादन करना है तो सुबह के प्रवचन में आइएगा, एक एक श्लोक के ऊपर एक एक शब्द के ऊपर हम आस्वादन करेंगे। क्यों ब्रह्मा जी सभी दक्ष और भृगु को साथ में लेकर क्यों गए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये लोग तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए नहीं जानते हैं, तो ब्रह्मा जी यह बताना चाहते थे कि देखो मेरे बालकों, ये दक्ष और भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मेरे पुत्रों तपस्या इस प्रकार से करनी चाहिए। वास्तव में यद्यपि हिरण्याकश्यपु असुर था, परंतु कभी कभी असुरों से भी हमारे जीवन में हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे यहां पर हिरण्याकश्यपु तपस्या कर रहा है, तपस्या करने का उद्देश्य गलत है परंतु तपस्या बहुत कठोर कर रहा है। हमें भी हमारे जीवन में यह धारण करना चाहिए कि हमें भी इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि सोना जानते हैं ना, गोल्ड, यदि सोना गटर में भी पड़ा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति उसे ले लेता है, मूर्ख व्यक्ति कहेगा अरे छी ये तो गटर में पड़ा है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह उस गटर से उस सोने को लेकर पानी से साफ करके ले लेगा। ठीक उसी प्रकार यदि शिक्षा, यदि ज्ञान बालक या असुर से भी मिलता है तो ले लेना चाहिए। उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह छोटा बालक हमें क्या ज्ञान देगा। अब देखिए भागवत जिस स्थान पर हुआ, भागवत कहने वाले सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे और इस भागवत कथा को सुनने वाले 100-100 साल के, 150 साल के, कुछ कुछ लोग तो 1000 साल के थे। तो ब्रह्मा जी भृगु और दक्ष को लेकर गए और इस पृथ्वी पर आए, आकर हिरण्याकश्यपु को ढूंढे, परंतु हिरण्याकश्यपु मिला ही नहीं, क्योंकि भागवत में वर्णन है हिरण्याकश्यपु तपस्या करके उनका शरीर छोटे छोटे कीड़े और मकोड़ों के द्वारा खा लिया गया था। चींटी कीड़े मकोड़े उनके शरीर को, मांस और चमड़ी और खून को पी चुके थे, खा चुके थे, केवल हड्डी बची थी और हड्डी के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ लग चुका था। वास्तव में यह कथा सतयुग की कथा है और वेदों में वर्णन है सतयुग में हड्डियों में प्राण रहते हैं और कलयुग में अन्न में प्राण होते हैं। तो हिरण्याकश्यपु के हड्डी में प्राण बचे थे, ब्रह्मा जी आकर ढूंढे तो हिरण्याकश्यपु नहीं मिला, परंतु हिरण्याकश्यपु जहां से आवाज आ रही थी ब्रह्म देव प्रसन्न हो, ब्रह्मा जी वहां पर गए और वहां जाकर ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यपु कि जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज की ओर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उस दिव्य जल को लिया और उस दिव्य जल को उस हिरण्याकश्यपु के ऊपर छिड़का। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस दिव्य जल को हिरण्याकश्यपु के ऊपर छिड़का, हिरण्याकश्यपु अद्भुत शरीर धारण कर लिया, अद्भुत शरीर। कहते हैं कि हिरण्याकश्यपु तपस्या करने के लिए जब निकला था और उस समय हिरण्याकश्यपु का जो शरीर था उससे हजारों गुना अच्छा और हजारों गुना शक्तिशाली वज्र के समान वह शरीर हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा गंगा जल छिड़का गया था। गंगा जी के प्रभाव से हिरण्यकश्यपु का शरीर मजबूत हो गया। हिरण्यकश्यपु का शरीर मजबूत हुआ। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को कहा कि हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। हिरण्यकश्यपु, तुम्हें जो चाहिए वो वर मुझसे मांग लो। मेरा दर्शन कभी अमोघ नहीं जाता है। मैं जिस व्यक्ति को दर्शन देता हूं वो व्यक्ति निश्चित मुझसे वर प्राप्त करके प्रसन्न होता है। तुम्हें जो चाहिए मुझसे प्राप्त कर लो। तब सबसे पहले हिरण्यकश्यपु खड़ा हुआ। खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके ब्रह्मा जी की स्तुति की। और स्तुति करने के बाद हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मा जी, यदि दास्यस्य भीमतान वरान में वरदोत्तम, हे वर देने में उत्तम, हे वर देने वाले ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते ही हो तो भूतेभ्य तद विशिष्टेभ्य मृत्युर्मा भू मम प्रभो। यदि आपको मुझे वरदान देना ही है तो मुझे वरदान दो कि मैं कभी न मरूं, मैं अमर हो जाऊं। यहां पर हिरण्यकश्यपु श्लोक में ब्रह्मा जी को प्रभु कह रहा है, प्रभु कह के संबोधन दे रहा है। ब्रह्मा जी आप प्रभु हो। और वास्तव में प्रभु का अर्थ होता है कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ। प्रभु का अर्थ होता है कर्तुम, जो शक्य है जो पॉसिबल है वे भी करे, और अकर्तुम जो इम्पॉसिबल है उसे भी कर दे, और सर्वथा सब जगह पर कभी भी वह इम्पॉसिबल बात को कर दे उसे प्रभु कहा जाता है। इस कौन में जो भी भक्त बन जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं? प्रभु जी। जैसे ही कोई इस्कॉन में आते हैं तो प्रभु और माता। वास्तव में ये गलत नहीं है। ये भक्ति करना कोई साधारण बात थोड़ी ना है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, भक्ति करना बहुत इम्पॉसिबल। रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में कहते हैं सुदुर्लभ। भक्ति का लक्षण क्या है? सुदुर्लभा, जो सबको नहीं मिलती है, बहुत दुर्लभ दुर्लभ। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु करोड़ों करोड़ों में किसी एक को यह भक्ति मिलती है। और उस करोड़ों अरबों में हम आ चुके हैं। इसलिए वास्तव में प्रभुपाद जी ने जो प्रभु शब्द दिया है वो बहुत योग्य है। तो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रभु कह रहा है, प्रभु आप मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहे हैं कि हिरण्यकश्यपु, अमर बनने का मुझे भी वांदा है, मैं भी अमर नहीं हूं। मुझे भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है, मैं तुझे अमर कैसे बना सकता हूं? जब जेब में 100 रुपया नहीं है तो दूसरे को 1000 रुपया कैसे दान कर सकते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वयं मैं अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूं? वास्तव में ब्रह्मा जी को भी एक दिन मरना पड़ता है, परंतु ब्रह्मा जी का जीवन थोड़ा लंबा है। जानना है कितना लंबा है? श्रुति परायण प्रभु ने मुझे ऑफिस में बिठाया तो वहां कैलकुलेटर था, तो मैंने सोचा चलो आज गिनती करा ही देते हैं ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा है। तो मैं और समीर प्रभु दोनों हिसाब जोड़ रहे थे। और सुनिए ब्रह्मा जी का जीवन कितना लंबा है। 1 सेकंड तो आप जानते हैं, 60 सेकंड होती है तब 1 मिनट होता है, 60 मिनट होती है तब 1 घंटा होता है, 12 घंटे होते हैं तब 1 दिन होता है, और 12 घंटे की रात होती है, 24 घंटे का 1 पूर्ण दिन होता है, और वैसे 30 दिन होते हैं तब 1 महीना होता है, वैसे 12 महीने होते हैं तब 1 साल होता है। जब ऐसे 4,32,000 वर्ष होते हैं तब 1 कलयुग होता है। ये जो कलयुग में हम जी रहे हैं, ये कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 दिन नहीं है, वर्ष। ये कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है और उसमें 5,000 वर्ष बीते हैं। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का और सतयुग 17,28,000 वर्ष का। तो कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये चारों युगों को यदि मिलाया जाए तो 43,20,000 वर्ष होता है। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। जब ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। अर्थात 4,32,00,000,000 वर्ष जब यहां हमारे बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा खत्म होता है। और वैसे ही 12 घंटे ब्रह्मा जी की रात है। तो 8,64,00,000,000 वर्ष जब हमारा यहां पर बीतता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। और वे भी ब्रह्मा जी के 365 दिन एक साल में होते हैं और 100 साल जीते हैं। तो ब्रह्मा जी कितना साल तक जीते हैं? ब्रह्मा जी 31,53,00,000,000 और 60,00,00,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। 31 नील कब होता है आप जानते हैं? एक जीरो लगाएंगे तो क्या बोलते हैं उसे आप मराठी में? क्या? शून्य। फिर दशक, दशक बोलते हैं, दशक। फिर 100, फिर 1,000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10,00,000, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, खरब, फिर 10 खरब, फिर नील होता है। तो 31,53,00,000,000 और 60,00,00,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। 31 नील यहां के 31,53,00,000,000 और 60,00,00,000 वर्ष जब बीतते हैं तब वैकुंठ में कारण दक्षाय विष्णु भगवान एक सांस लेते हैं। जैसे मैंने एक सांस लिया तो आधा सेकंड भी नहीं हुआ। भगवान विष्णु जब एक सांस लेते हैं तो यहां कितना समय बीत जाता है? भगवान कारणोदकशायी विष्णु जब एक सांस लेते हैं तब 31,53,00,000,000 और 60,00,00,000 वर्ष बीत जाते हैं। कल्पना करो भगवान विष्णु कितने बड़े होंगे। भगवान के एक सांस में यहां तो कितने चतुर्युग, कितने कल्प और हजारों हजारों बार हमारा जन्म होकर हम मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप को कहा कि हिरण्याकश्यप जी महाराज, मुझे भी एक दिन मरना पड़ता है, इसलिए इसके अलावा और जो भी मांगना है मांग लो। तब हिरण्याकश्यप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा था कि ब्रह्मा जी डायरेक्ट नहीं दे रहे तो ऐसे कान नहीं पकड़ रहे तो ऐसे कान पकड़ाऊंगा पीछे से। तो ठीक है ब्रह्मा जी, आप मुझे अमर देने का वरदान नहीं दे रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं जो मांग रहा हूं वो आप मुझे दो। हिरण्याकश्यप कहते हैं कि मुझे आप वरदान दो कि न अंतर बही दिवानक्तम मन्यसादपि चायुधे। कहते हैं मैं मेरे घर पर न मरूं, ऐसा वरदान दो। बाहर भी न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, आकाश में न मरूं, पृथ्वी पर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, प्राणी से न मरूं, दिन में न मरूं और रात में न मरूं, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्याकश्यप तो खुश हो गया, इसके अलावा मुझे कौन मार सकता है? आप कल्पना कीजिए, जिसे अंदर भी न मारे, बाहर भी न मारे, ऊपर न मारे, नीचे न मारे, मनुष्य न मारे, प्राणी न मारे, अस्त्र से न मारे, शस्त्र से न मारे, तब उसे कौन मार सकता है? परंतु वह मूर्ख नहीं जानता था कि भगवान श्री विष्णु बुद्धिमान के भी बुद्धिमान है। बुद्धिम बुद्धि मताम अस्मि, सबकी बुद्धि भगवान के सामने फेल हो जाती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठकर वही तो बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम। हिरण्यकश्यप यह वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया। परंतु भक्तों, एक प्रश्न हो सकता है कि इतने बड़े असुर की कथा भागवत में क्यों दी जा रही है। वास्तव में यह सब कथाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, भागवत के इस उपदेश से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने यह सब प्राप्त, कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। असुर जो होते हैं, देखिए अब सिद्धांत आ रहा है, बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट हो रहा है। असुर जो होते हैं वे कुछ प्राप्त करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करते हैं, परंतु भक्त जो होते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रसन्न करते हैं। देवताओं को, देवताओं से जो कुछ मांगते हैं वे आसुरी स्वभाव है, और भगवान से जो मांगते हैं वे भक्त का स्वभाव है। भक्तों, यदि जीवन में कुछ मांगना भी हो तो भगवान कृष्ण से मांगना चाहिए, देवी देवताओं से नहीं मांगना चाहिए। यहां पर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगा और ब्रह्मा जी ने दे दिया। क्यों दिया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मजबूर होकर दिया। ब्रह्मा जी चाहते नहीं थे हिरण्यकश्यप को यह मिले। कौन चाहे कि ब्रह्मा जैसा मैं हिरण्यकश्यप को पद दे दूं, लेकिन मजबूर होकर दिया। देवता गण स्वतंत्र नहीं है, वे मजबूर होकर देते, उसे देना पड़ता है। तो वास्तव में हमारे वेद शास्त्र और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इस बात को अपने शास्त्र में क्लियर किया है कि भक्ति करनी है और कुछ मांगना भी है तो कृष्ण से मांगना चाहिए, देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। और वास्तव में देवताओं की भक्ति नहीं होती है, देवताओं की उपासना होती है। और देवताओं की उपासना और कृष्ण की भक्ति में कितना अंतर है भागवत दिखा रहा है। आप देखिए एक एक पॉइंट, मैंने जो आधा मिनट कथा की, आधा घंटा, उससे आप देखिए हिरण्यकश्यप कुछ प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो सबसे पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई मेहनत नहीं। यहां देखिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यप को कितनी मेहनत करनी पड़ी, 36,500 वर्ष तक निर्जला उपवास, और केवल निर्जला नहीं, निर्जला के साथ साथ ऊर्ध्व बाहु नवोदुष्टि पादांगुष्ठा शितावनी, एक अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर 36,500 वर्ष तक, तब जाकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रसन्न हुए, खड़े हुए। तो सबसे पहली बात, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब हिरण्यकश्यप का एक छोटा सा 5 साल का बालक था जिसका नाम था प्रहलाद। अब 5 साल का बालक क्या कर सकता है? कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम लेता था, हरे कृष्णा केवल भगवान का नाम लेकर भगवान प्रसन्न हो। गीता में भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदम भक्ति उपेतम अश्नामि प्रयतात्मा, मैं तुरंत प्रसन्न हो जाता हूं। देखिए पहली बात, कृष्ण की भक्ति और देवताओं की उपासना में कितना अंतर है। देवताओं की उपासना करने में बहुत कष्ट है, बहुत मेहनत है, और कृष्ण की भक्ति बिल्कुल सरल है, और थोड़ी सी भक्ति करो कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, देवताओं की बहुत 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 उपासना करने के बाद भी वे देते कितने हैं, कितना देते हैं? बहुत कम। और भगवान की थोड़ी भक्ति करो तो वे बहुत ज्यादा दे देते हैं। देखिए रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक सिर यज्ञ कुंड में डाल दिए। रावण के दशानंद 10 सिर थे, 10 सिर को जब यज्ञ कुंड में डाला तब जाकर शिव जी प्रकट हुए। दसों शीर की बलि देने के बाद शिव जी ने रावण को क्या दिया? सोने की लंका, सोने की लंका प्रदान की। परंतु वही सोने की लंका जब रावण का भाई विभीषण भगवान श्री रामचंद्र के शरण में गया और भगवान श्री रामचंद्र के शरण में जाकर प्रणाम किया, प्रणाम करते ही भगवान ने विभीषण को कह दिया लंकेश, लंका का ईश, लंका का राजा भगवान राम के मुख से निकल गया। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाए। भगवान के मुख से निकल गया लंका का राजा, तो फिर वो हो गया। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण को प्रणाम करने मात्र से लंका का राजा बना दिया। जामवन जी ने पूछा, रामायण में वर्णन है, जामवन जी ने पूछा, प्रभु आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अब तो आप रावण के साथ युद्ध भी नहीं किया है, उनको हराया भी नहीं है, यदि आप रावण को नहीं हरा सके और लंका को नहीं जीत सके तो? तो भगवान श्री रामचंद्र ने इतना ही कहा कि जामवन जी, यदि मैं विभीषण को लंका नहीं दे सका तो मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा, परंतु राजा निश्चित बनाऊंगा। भक्तों कल्पना करो, जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 सिर यज्ञ कुंड में दे दिए तब जाकर लंका मिली, और वही लंका भगवान श्री रामचंद्र ने एक प्रणाम करने मात्र से दे दी। विभीषण को एक प्रणाम करने मात्र से। तो यह दूसरी बात, देवता देते हैं तो बहुत कम देते हैं, परंतु भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के हजारों हाथ हैं, भगवान जब देते हैं तो हजारों हाथ से देते हैं। तीसरी बात, देवता जब दे देते हैं, देवता मान लीजिए कुछ आपको दे भी दें, तो देवता दे देते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करके वह देवता का भक्त संतुष्ट नहीं होता है। देवता कितना भी दे दे परंतु वह संतुष्ट नहीं होता है, परंतु भगवान यदि अपने भक्त को कुछ भी दे दे तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए प्रकट दृष्टांत है, हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी ने क्या नहीं दिया, तीनों भुवन का राजा बना दिया, फिर भी हिरण्यकश्यपु हृदय से दुखी था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। परंतु दूसरी ओर भगवान के भक्त ध्रुव को देखिए, भगवान की प्राप्ति करने गया है, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कह रहे हैं कि ध्रुव क्या चाहिए, ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गए। वही बात रामायण में, भगवान श्री रामचंद्र केवट की नौका से जब उतरे और भगवान राम ने केवट को कहा कि ये उतराई, ये आपका भाड़ा रखिए, तब केवट इतना ही कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आपके चरण को धो लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत सुंदर केवट, जब भगवान ने कहा कि केवट आप ये उतराई रख लो, आप ले लो, तब केवट इतना ही कहता है कि हे नाथ अब कछु न चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना ही है तो आप कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए कि मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी, न धनम न जन्म न सुंदरी। भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की जिस पर कृपा होती है वह संतुष्ट हो जाता है। और देवता यदि अपने उपासक को कितना भी दे देते हैं तो वह संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। और भक्तों जिसके पास संतोष नामक धन नहीं है वे पूरी दुनिया का राजा होने के बाद भी वह दुखी रहेगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति को दुनिया की सारी संपत्ति दे दी जाए, उस व्यक्ति को सारी होटल उनके नाम पर कर दी जाए, सारी अच्छी अच्छी स्त्री उसको दे दी जाए, फिर उसे पूछा जाए कि आप सुखी हो, यदि उसे संतोष नहीं है तो वह दुखी होगा। कहते हैं हय धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। संतोष नामक धन जब किसी के हृदय में आ जाता है तो सब धन धूल के समान होता है। हमने तो देखे हैं, हम लोग डायमंड का बिजनेस कर चुके हैं, करोड़पति अरब अरब रुपये जिनके पास हैं, उनकी 100 पेढ़ी घर पे बैठकर खा सकती है, उतना धन उसके पास है, फिर भी असंतुष्ट होने के कारण, अजितेंद्रिय होने के कारण, एसी के बीच में बैठने के बाद भी उनका हृदय ईर्ष्या से जलता रहता है। परंतु हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिसके पास शाम को क्या भोजन करना है वह उनको पता भी नहीं है, झोंपड़ी में रह रहे हैं, परंतु हृदय में संतोष है, वह सुखी है, आनंदित है, क्योंकि संतोष नामक धन है। ये पैसा रुपया धन दौलत गाड़ी बंगला यह कोई बड़ी वस्तु नहीं है, संतोष नामक धन सबसे बड़ी चीज है। देवताओं की भक्ति करने से संतोष नहीं मिलता है, भगवान की भक्ति करने से संतोष मिलता है। और मान लीजिए देवता देते भी हैं तो क्या देते हैं, देवता देते हैं तो वे अपना कुछ नहीं देते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं को जब देना भी देना होता है तो वे भगवान से लेकर देते हैं, देवता के पास अपनी शक्ति नहीं होती, भगवान से लेकर देवता लोग देते हैं। आप देखिए यहाँ पर सभी देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, भागवत में बारंबार कथा आती है, सभी देवता कष्ट उनके ऊपर कष्ट आया, भगवान विष्णु के शरण में गए। अब देवता अपना स्वर को नहीं संभाल सकते हैं, उनके भक्तों को कैसे संभाल पाएंगे, तो देवता स्वतंत्र नहीं है, भगवान से लेकर देते हैं। और भक्तों देवता की भक्ति करने में बहुत बड़ी रिस्क की बात यह है कि देवता की उपासना में यदि थोड़ी गड़बड़ हो गई तो वही देवता आपको परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। जो गांव में रहते उसे पता होगा देवता बहुत नड़ते हैं, देवी देवता, कुछ लोग मन्नत रखते हैं कि मुझे बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वह हो जाए, इतना धन मिल जाए, और जो ठीक से वह मन्नत पूरी नहीं करते हैं तो वही देवता उसे नड़ते हैं, उसे उसके फैमिली में बुखार आना, ये करना वो करना, वही उसे परेशान करते हैं। परंतु कृष्ण की भक्ति में ऐसा नहीं है, कृष्ण की भक्ति यदि आप करते हो और भक्ति में कुछ कमी भी रह जाती है फिर भी कृष्ण यही समझते हैं नहीं इन्होंने मेरी भक्ति पूर्ण की। और देवताओं की भक्ति में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो फिर अच्युतम केशवम। हमारे मुंबई की एक घटना है, एक व्यक्ति दुर्गा देवी का बहुत बड़ा भक्त था और दुर्गा देवी का भक्त, उन्होंने विवाह किया। आपने देखा होगा विवाह करके जब अपनी पत्नी को घर पर लाते हैं तो मंदिर में लेकर जाते हैं, पहले तो विवाह करके घर पर आ रहा था तो दुर्गा देवी के मंदिर में लेकर गया और दुर्गा देवी को जाकर प्रार्थना करता है। वास्तव में प्रार्थना यह थी कि हे दुर्गा देवी, हे भैरवी, मेरी पत्नी की, मेरी भारिया की आप रक्षा कीजिएगा। इस बात को संस्कृत में क्या कहा जाता है, भारिया रक्षति भैरवी, हे भैरवी रक्षति भारिया, मेरी भारिया की रक्षा कीजिए। परंतु ये बेचारा संस्कृत नहीं जानता था या भूल गया, दुर्गा देवी को क्या प्रार्थना किया, भारिया रक्षति भैरवी करने के बदले भारिया भक्षति भैरवी, एक अक्षर र के बदले में भ बोल दिया बेचारा, भारिया भक्षति भैरवी। दुर्गा देवी को प्रार्थना किया, घर पर गया, सुबह उठकर देखा तो पत्नी मर गई। अब दुर्गा देवी को जो प्रार्थना किया वो तो पूर्ण करना था, सुबह हरि बोल हो गया, नहीं उठी, बेचारा बहुत दुखी हुआ। 10-15 साल के बाद दूसरा विवाह किया, सत्य घटना है, दूसरा विवाह करके अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था घर पर तो कहा नहीं अब तो मंदिर में जाकर हृदय से प्रार्थना करूंगा, फिर से उस मंदिर में गया दूसरी पत्नी को लेकर और अब तो जोर से प्रार्थना किया, भारिया भक्षति भैरवी। पत्नी घर पर नहीं पहुंची, गाड़ी में ही मर गई, क्योंकि हृदय से प्रार्थना थी ना भाई। सुबह नहीं हुई, रात को ही हरि बोल। बेचारा बहुत दुखी हुआ, दूसरी पत्नी मर गई, अब तो तीसरा विवाह करते करते उसका आधा जीवन बीत गया, तब जाकर तीसरी पत्नी मिली और तीसरा विवाह किया। तीसरा विवाह करके जब उसे घर पर ला रहा था, कहा अब तो दुर्गा देवी को हृदय से प्रार्थना करूंगा। दुर्गा देवी के मंदिर में गया और दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर वही प्रार्थना करने वाला था, भारिया भक्षति। जैसे वो बोलने गया तो उस पत्नी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया, थोड़ा बहुत संस्कृत जानती थी ये तीसरी पत्नी, थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा को जानती थी। कहा पतिदेव ये क्या कर रहे हो, मुझे आज से ही मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। तो उस पति ने कहा नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा हूँ। कहा पतिदेव लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हो, मारने की प्रार्थना कर रहे हो? लंबी उम्र की प्रार्थना करना है तो भारिया भक्षति भैरवी नहीं, भारिया रक्षति भैरवी बोलिए। तब जाकर उस मूर्ख को पता चला कि एक अक्षर की मिस्टेक के कारण मैं दो पत्नी को खो चुका। यह है देवताओं की भक्ति। और भगवान की भक्ति, रत्नाकर नाम का डाकू जो केवल पशुओं का वध करता था, नारद मुनि मिल गए, नारद मुनि की कृपा हुई, नारद मुनि ने मंत्र दिया राम नाम जपो तुम्हारा उद्धार होगा, परंतु बोलने का अभ्यास मरा था। किसी को भी मारता था तो ये मरा, मारने का अभ्यास था। तो नारद मुनि सिखा रहे थे राम 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 बोलो, तो ये बोलता था राम 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 मरा मरा मरा। बहुत अभ्यास करवाया, बोलो राम 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 मरा 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 मरा। ये डाकू क्योंकि जीवन भर मरा मरा बोलता था, इसलिए राम बोलने का अभ्यास नहीं था। नारद मुनि बार बार कहते रह गए राम बोलो, तो ये बोलता था राम 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 मरा 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 मरा। नारद मुनि ने अंत में कहा कि ठीक है भाई, आपको मरा जपना है तो मरा जपो, क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है। भगवान का नाम बीज के समान है, किसी भी बीज को आप जमीन में उल्टा बो, सीधा बो, आड़ा टेढ़ा कैसे भी बो, वो अंकुरित बिल्कुल सीधा ही होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम किसी भी प्रकार लो, फल बिल्कुल सीधा मिलता है। उस दिन से वह रत्नाकर नाम का डाकू मरा मरा जपने लगा। और शास्त्र में कथा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह डाकू मरा मरा जपते जपते एक दिन वाल्मीकि बन गए। ये जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि कब बने? उल्टा नाम जप कर। और भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में आए, उनके पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दी ब्रह्म के समान। एक और देवी देवताओं के नाम में एक गड़बड़ होने पर मृत्यु हो गई, और दूसरी और भगवान का नाम में यदि थोड़ी गलती भी हो गई, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप घर पे जाकर मरा मरा बोलिए। बाय मिस्टेक यदि गलती हो भी जाती है तो भगवान उसे देखते नहीं। भागवत की 11वें स्कंध में कवि ऋषि कहते हैं धावन मिलिन वान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। भक्ति का मार्ग ऐसा है, आंख बंद करके भी यदि भक्ति के मार्ग में दौड़ोगे तो गिरोगे भी नहीं और पतन भी नहीं होगा। और देवताओं की भक्ति में कितना भी सतर्क होकर आप चलोगे फिर भी उसमें पतन होगा। इसलिए भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। नहीं तो आप देख लीजिए, एक नहीं हजारों दृष्टांत। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था और नरसिंह देव भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर जब हिरण्याकश्यप को मार रहे थे, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की भक्ति किया, ब्रह्मा जी देखने भी नहीं आए कि मेरे भगत का क्या हाल हो रहा है। भागवत में वर्णन परसों की कथा में आएगा। भगवान नरसिंह देव जब जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, तो ब्रह्मा जी भाग जाएंगे, अरे भागो भागो रे भागो, ये भगवान इतने उग्र स्वरूप में। अरे ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, लक्ष्मी जी आएगी हार लेकर, मेरे पति देव है मैं पहना दूंगी, परंतु वे भी जब आएंगे भगवान नरसिंह देव को देखकर वे भी भाग जाएंगे, प्रहलाद के अलावा कोई नहीं खड़ा रहेगा। देखिए ब्रह्मा जी की 36,500 वर्ष तक तपस्या करने वाला भगत ब्रह्मा जी देखने तक नहीं आए, बचाने की बात तो दूर रही। बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि किसकी भक्ति करनी चाहिए। रावण शिव जी का भक्त था। भगवान श्री रामचंद्र जब रावण को मार रहे थे, शिव जी बचाने की बात दूर रही, देखने भी नहीं आए कि भगत का क्या हाल हो रहा है, चला जरा देख कर आऊं। नहीं, कंस दुर्गा देवी का भक्त था, भगवान ने मार ही मार डाला, दुर्गा देवी आई भी नहीं। देवी देवताओं के भक्त को मरना पड़ता है, परंतु भागवत में छठे स्कंद में एक कथा अजामिल नामक व्यक्ति की आती है। जीवन भर पाप किया, ऐसा एक पाप नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था, परंतु अंत समय में एक बार वो भी अपने पुत्र के नाम से निशम्य म्रिय मानस्य ब्रवतो हरि कीर्तनम भरतुर नाम महाराज पार्षदा ससापतन अंतिम समय में मरते के समय अपने पुत्र का नाम नारायण था, संजोगवश नारायण नाम लिया, भगवान के चारों पार्षद आए और उसे बचा लिए। देवी देवताओं की एक और करोड़ों वर्ष तक तपस्या करो फिर भी वह मृत्यु से नहीं बचाते हैं। नारायण भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाला एक बार भी उनका नाम ले लिया तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आप सब बुद्धिमान हो, समझ सकते हो किसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा हरे राम। तो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु क्या करेगा यह यदि जानना है तो कल सुबह आइए और फिर प्रहलाद महाराज का जन्म होगा, प्रहलाद महाराज के गुणों की कथा होगी, फिर विष्णु पुराण से प्रहलाद महाराज को बहुत बहुत मारने का प्रयास, पहाड़ से फेंका जाएगा, होलिका की गोद में बिठाया जाएगा, असुरों के द्वारा समुद्र में फेंका जाएगा, बहुत बहुत आगे सुंदर सुंदर कथा आएगी। यदि आपको श्रवण करना हो तो कल सुबह, कल शाम को, परसों सुबह और परसों शाम को आइए।